ओम शांति, ओम शांति। आज के इस संध्याकालीन सत्र में आप सभी भाई बहनों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम सभी एक ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे जिनका जीवन हम सभी के लिए आदर्श था, जो हम सभी के लिए प्रेरणा के सूत्र थे, उदाहरण मूरत थे, जो इस यज्ञ के आधार मूरत थे, जिन्होंने अपने एक एक क्षण को सारे संसार की सेवा के लिए और बाबा को प्रत्यक्ष करने में सफल किया। एक ऐसे महान विभूति जो इस यज्ञ के आधार स्तंभ थे, जो त्याग मूरत, तपस्या मूरत और ईश्वरीय सेवा में चार चांद लगाने वाले, जिन्होंने अपने एक एक सेकंड को सफल करके सारे विश्व में बाबा को प्रत्यक्ष किया है, जो इस यज्ञ के वफादार थे, फरमानवरदार थे, जिनको साकार में ब्रह्मा बाबा बड़े अच्छे अच्छे टाइटल दिया करते थे कि ये सबके विघ्नों को दूर करने वाला विघ्न विनाशक गणेश है, तो कभी बाबा कहते ये तो त्रिकालदर्शी संजय है, कभी बाबा कहते कि ये हड्डी हड्डी सेवा करने वाला दधीच ऋषि है, और वो ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुख्य संपादक थे, मुख्य प्रवक्ता थे, महान लेखक थे, जिन्होंने 200 से भी अधिक किताबें ईश्वरीय विश्वविद्यालय की लिखी। अब आप सब जान गए होंगे वो कौन थे। बहुत सुंदर वो थे, हम सबके वरिष्ठ भ्राता, आदरणीय भ्राता जगदीश चंद्र हसीजा जी। ये मई मास चल रहा है, मई मास आते ही हम सबको उनकी याद आने लगती है, क्योंकि 12 मई 2001 उस दिन ही आपने अपनी संपन्न और संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त किया। तो आज ऐसे महान विभूति के बारे में हम जानेंगे आदरणीय सुभाष भाई जी से, क्योंकि सुभाष भाई की ये विशेषता रही कि आप उनके अंग संग में रहे, आपने उनको बहुत करीब से देखा, उनकी खूब पालना लिया, और मैं तो यूं कहूं कि आप उनके बहुत स्नेही रहे। सुभाष भाई जो कि बाल्यकाल से ही ज्ञान में है, और आपका पूरा ही परिवार इस ईश्वरीय ज्ञान से जुड़ा हुआ है, और आपके परिवार से पता है कितने लोग ज्ञान में, 60 लोग। आपके रिलेटिव पूरा परिवार मिलाकर के 60 लोग, और उसमें से 10 भाई बहने तो यज्ञ में और भिन्न भिन्न स्थानों पर, सेंटर पर, है ना, समर्पित ही है। आप सोचिए, मैं तो कई बार सोचता हूँ कि हाँ, कितने बड़े भाग्यशाली की जिनके परिवार में सारा ही परिवार और आप डाइनिंग हॉल की व्यवस्था देखते हैं ज्ञान सरोवर में, आप विदेशों में भी अनेक स्थानों पर जाकर के अनेक आत्माओं की सेवा की है, आप ज्ञान सरोवर में डाइनिंग हॉल की तो सेवा करते ही हैं, लेकिन आपके अंदर एक बहुत बड़ी विशेषता है, सब दादियों के, सब वरिष्ठ भाई बहनों के सुंदर सुंदर आर्टिकल लिखना, क्योंकि आप आपकी ऐसी सेवा रही कि सब दादियों के, बड़े भाई बहनों के काफी नजदीक रहे, तो उनके बारे में बहुत आपके पास कहानियों का स्टॉक है, तो आज भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम सुभाष भाई जी से यही जानना चाहेंगे कि आदरणीय जगदीश भाई जी से जब आप पहली बार मिले तो आपको कैसा लगा? उस पहली बार में आप जब उनसे मिले तो कुछ बातें ही हुई या उनको केवल देखे, और यदि बातें हुई तो क्या बातें हुई वो हम जानना चाहेंगे।
ओम शांति। धन्यवाद अर्जुन भाई जी, आपने तो सारा जगदीश भाई की जीवन कहानी सामने लाके रख दी एकदम चंद शब्दों में। वैसे तो जगदीश भाई को कौन नहीं जानते, सभी लोग किसी ना किसी रूप में उनके कनेक्शन में है। उनके लिटरेचर 200 से अधिक किताबें, तो मन में रहता था कि जगदीश भाई कहाँ होंगे, कैसे होंगे। तो क्या हुआ, ओम शांति भवन में प्रकाश मणि दादी जी मुरली चला रही थी, 1985 की बात है ये, और बीच मुरली के बीच में ही बाबा के महावाक्य थे कि जगदीश बच्चा बहुत अच्छी सेवा करता है। तो मन में वही संकल्प लेते हुए मुझे पता चला कि जगदीश भाई जी मधुबन में आए हैं, तो मैं खोजा कहाँ रहते वो, क्योंकि मैं भी छोटा ही था उस समय। तो मुझे पता चला कि जगदीश भाई जी मधुबन के साथ में एक बाल भवन है, जहाँ सुदर्शन भवन है ना, वहाँ उनका निवास है। तो डर तो लग रहा था, इतने बड़े भाई से मिलना है, तो डरते डरते धीरे धीरे बाबा बाबा करते करते मैं वहाँ चला गया बाल भवन में। बाल भवन में गया तो देखा वो अपने लिखने में व्यस्त थे। मैं जाके खड़ा हो गया सामने, खड़ा हो गया तो वो लिख रहे थे, लेकिन उनको अंदाज आया कोई तो आया है करके, तो उन्होंने एक ऐसी नजर दिया और फिर लिखना शुरू कर दिया, और हाथ से थोड़ा बोला ऐसे बैठ जाओ करके, क्योंकि वो कुछ गहरे चिंतन का लिखन कर रहे थे। तो जैसे ही वो एक पैराग्राफ पूरा हो गया तो बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। उनको लगा कुछ काम से आया होगा, तो उन्होंने पूछा बोलो कुछ काम है? तो मैंने कहा कुछ काम नहीं है। अच्छा, तो मैंने कहा आपको बाबा ने आज याद किया ना, तो आपको मिलने का बहुत दिल किया। अच्छा, फिर बोला दो मिनट रुको, फिर उन्होंने कहा, फिर वो थोड़ा सा उनका बाकी था वो पूरा कर दिया। फिर उन्होंने कहा अच्छा बोलो कहाँ सेवा करते? तो उस समय में रोटी डिपार्टमेंट में सेवा करता था। तो उनको कहा, उन्होंने पूछा कहाँ सेवा करते हैं? अभी मैं समर्पित भी नहीं हुआ था, 1986 में समर्पित हुआ, एक साल पहले की बात समझो। तो मैंने कहा मैं रोटी डिपार्टमेंट में सेवा करता हूँ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, हाथ से काम करो और बुद्धि से बाबा को याद करो। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, क्योंकि जो कंप्यूटर है लिखाई पढ़ाई करते तो सारी बुद्धि उसमें जाती है, और ये तो हम बुद्धि तो फ्री होती है ना सेवा करते करते। तो बोला अच्छा कहाँ से आए? तो मैंने कहा मैं सतारा के पास एक छोटा सा गांव है वहां से आया हूँ। तो उन्होंने बोला अच्छा बहुत अच्छी बात है। फिर उन्होंने कहा और कुछ कहना है? नहीं, बोला मैं तो बहुत तृप्त हो गया, क्योंकि सारा तो सुना है, तो जैसे अर्जुन भाई ने बताया ना, ये गणेश जी है, संजय है, सारी बातें सुनी हुई थी, तो उसी दृष्टि से मैं उनको देख रहा था। फिर वो खड़े हो गए, मैं भी खड़ा हो गया, वो तो बहुत लंबे चौड़े थे, ऐसे खड़े हो गए, और एक वहाँ पेड़ा मतलब टोली थी मेरे मुंह में खिलाई, और ऐसे भाकी पहने एकदम, मैं तो जैसे कि वतन में चला गया, और इतना नशा चढ़ गया। तो वहां से मैं पैदल करते करते बाबा के पहाड़ी पे चला गया। बाबा के पहाड़ी पे करीब करीब एक घंटा मैं वहां बैठा, इतना खुशी इतना आनंद, और वो जो नशा था करीब करीब एक मास नशा चला वो, इतना खुशी इतना आनंद। और जगदीश भाई मुझे मिले, और उन्होंने जाते जाते बोला था कि जब भी तुम्हारा मन करे ना तब भी आ जाना मिलने के लिए। तो मुझे इतना खुशी हुई कि इतने बड़े भाई मुझे कभी भी मिलने के लिए बुलाया करके। तो ये हमारी पहली मुलाकात थी।
वाह वाह, बहुत सुंदर। इतने वरिष्ठ भाई और इतनी निर्माणता है ना कि एक बार भी यदि किसी को मिल लेते थे तो जैसे कि उनको जैसे बाबा की तरह हम सभी सुनते हैं ना दादियों के अनुभव कि बाबा एक बार भी जिससे मिल लेते थे फिर वो जीवन भर भूलता नहीं था। वैसे सुभाष भाई जी को जगदीश भाई की पहली मिलन ही ऐसी थी कि ये एकदम नशे में और खुशी में झूम गए। बहुत सुंदर बात। मुझे भी अपनी एक बात याद आ रही है कि जब मैं जगदीश भाई जी से पहली बार मिला तो क्या था, उस समय सुदर्शन भवन में रहते थे। एक माता आई और मुझे डायरी पेन देने लगी, कहती भैया जगदीश भाई अपने कमरे में होंगे, जरा कल क्लास में उन्होंने एक शायरी सुनाई थी वो नोट करा लाना। मैंने कहा ये माता कहाँ से आ गई। मैंने कहा माता जी आप जगदीश भाई जी को जानते हैं, वो कितने बिजी होते हैं और आपकी शायरी नोट कराने के लिए मैं जगदीश भाई जी के पास जाऊं। और मुझे तो डर लगे क्योंकि मैं भी नया नया उस समय। तो माता हमारे पीछे, नहीं नहीं जाओ बहुत निर्माणचित हैं भाई जी लिख देंगे। माता मुझे छोड़े नहीं। अब मैं डरते डरते किसी तरह मैं गया और वो सचमुच दरवाजा बंद करके कुछ अपनी लिखाई पढ़ाई में व्यस्त थे। फिर मैं माता को, माता जी जगदीश भाई के भाई दरवाजा बंद है मैं तो जाता हूं। तो कितनी दरवाजा खटखटाओ वो निकलेंगे। दरवाजा खटखटाओ निकलेंगे, वो मना नहीं करते हैं। अरे मैंने कहा फिर ठीक, मैं हिम्मत करके दरवाजा खटखटाया तो उन्होंने दरवाजा खोला। कहा अच्छा अच्छा कुछ काम है, बड़े प्यार से कुछ काम है। मेरी जितनी डर थी वो सब खत्म हो गई। मैंने कहा तो सचमुच बहुत निर्माण। मैंने कहा हाँ भाई साहब एक माता बाहर खड़ी है, वो डायरी पेन दिया है, आपने कल क्लास में कोई शायद शायरी सुनाया है ना, तो वो कहती है भाई साहब से हमारे शायरी नोट करा लाओ। तो भाई जी मुस्कुराए, कहा अच्छा चलाओ अभी नोट कर देता हूँ। तो सचमुच जैसे सुभाष भाई जी ने बताया, सचमुच वो बहुत ही निर्माणता कि कोई भी मिलने जाए तो एक मिलन से जैसे कि वो उनका बन जाता था। तो हम आपसे दूसरा प्रश्न जानना चाहेंगे कि मैंने सुना कि वो दिल्ली में भी रहते थे कुछ समय, यहाँ पांडव भवन में रहते थे, तो ज्यादा समय वो दिल्ली में रहते थे या पांडव भवन में रहते थे, बाकी मधुबन में उनका क्या स्थान था, क्या सेवाएं थी जब वो मधुबन में रहते थे? तो
वैसे आपके बात से एक बात हमें याद आई, जो शुरू शुरू में जगदीश भाई जी यहाँ आए थे मधुबन आए थे तो पूरा वैराग वृत्ति लेके आए थे पूरा, कि अब मैं बाबा के पास ही रहूंगा, मैं जाऊंगा नहीं वापिस। तो आए तो 8-10 दिन रहे बाबा मधुबन में, साकार बाबा बहुत पालना दी मिलने जुलने। 10 दिन के बाद बाबा ने कहा बच्चे कब जा रहे हो? जैसे उन्होंने कहा तो उसके जैसे जमीन खिसक गई। मैं तो सब कुछ छोड़ के आया हूं, अब मैं कहां जाऊंगा? तो लेकिन बहुत विश्वास था, निश्चय था कि ये कोई साधारण नहीं है, इसके अंदर परमात्मा आता है, ये भगवान का ये तो रथ है, उनके तरफ से मुझे आज्ञा मिली। तो एक तरफ बाबा की आज्ञा बच्चे कब जा रहे हैं, और दूसरा कि हम अगर जाएंगे उस दुनिया में नरक है दुखी है उसमें क्या करना है, क्या करना है ऐसा करके। तो उन्होंने अपना बोरी बिस्तरा लपेट लिया क्योंकि बाबा की आज्ञा है। वो गए रेलवे स्टेशन पे, नीचे रेलवे स्टेशन पे गए तो वहां आधा घंटा गाड़ी रुकती थी उस जमाने में, तो सामान रख दिया जमा दिया। फिर संकल्प आया, अरे तुम पागल हो, तुम भगवान को छोड़ के जा रहे हो, तुम उतर जाओ चलो पर वापिस चलो। फिर सामान उन्होंने नीचे उतार दिया, नीचे उतार दिया। फिर नीचे प्लेटफॉर्म पे गाड़ी शुरू होने वाली थी, अरे तो अभी भगवान को जाना ही नहीं, उसने आज्ञा दिया है, उसकी आज्ञा का अवज्ञा तो नहीं होगी, नहीं, उन्होंने भेजा आपको। फिर चल पड़े, फिर डब्बे में बैठ गए। ऐसे करते करते पूरा दिल्ली तक पहुंच गए, उलझन में उलझन में। फिर जब उतरे वहां स्टेशन पे उतरे, कुली ने सामान उठाया और चल पड़े। थोड़ा दूर चले गए, फिर उनको संकल्प, अरे तुम कहां है, काटेरी दुनिया में जा रहा है, ये पापी दुनिया है, चल इसी ट्रेन से वापिस चल। वो कुली को बोला, भैया सामान फिर जमा दो। तो बोलते ही, क्या ठीक तो है आपका? मैं बोला ना, मेरा प्रोग्राम चेंज हो गया, मैं तुम्हारा पैसा दे दूंगा। तो फिर वापिस सामान रख दिया। अब सामान रख दिया तो ऐसे सामान उतारे चढ़ावे, उतारे चढ़े, तीन बार हो गया उधर दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। फिर जैसे ट्रेन चलने वाली थी, फिर उनको, नहीं नहीं ये तो भगवान की आज्ञा है, ऐसा कैसे हो सकता है, जो सेवा के लिए मुझे भेजा है मुझे जाना ही पड़ेगा। तो फिर चलती ट्रेन से फिर सामान उतार दिया, फिर अपने निवास स्थान पे गए। तो ये बाबा के प्रति उनका प्यार और निश्चय, और फिर बाबा के प्रति विश्वास कि अवज्ञा नहीं होनी चाहिए। फिर उन्होंने जो शुरुआत की, जो मैं समझता हूं कमला नगर में कोई भी व्यवस्था नहीं थी, कोई टेबल कुर्सी नहीं, खटिया होती वही ऑफिस होता था उनका, उसी पर एक तकिया होता था, उसे तकिया पर लिखना ये करना वो सारी चीजें होती थी। तो देखो कैसे बाबा ने उनको, और दूसरी बात, जब वो बाबा से मिलने आए थे, तो उनके साथ चार पांच लोग पढ़े लिखे, कोई मैनेजर था, कोई कुछ था, कोई कुछ था। तो कुछ इस प्रेसिडेंट को लेटर लिखना था, तो रात के क्लास में बाबा ने कहा, बच्चे आप लेटर लिख सकते हो? सभी को बोला, आप तो सब होशियार हो। तो सब ने, हाँ बाबा हम लिखेंगे, हम लिखेंगे। पांचों ने हाथ उठाया। अब क्या हुआ, उस समय ना 10 बजे लाइट बंद हो जाती, रात को लाइट बंद हो गई। अब वो दूसरा दो चार लोग बोलते, अरे कोई बात नहीं, लाइट बंद, बाबा को बोलने की लाइट बंद हो गई थी, हम क्या, नहीं तो सुबह लिख देंगे। लेकिन जगदीश भाई को विश्वास था, निश्चय था, ये किसने बताया, स्वयं परमात्मा ने, बाबा ने, मुझे लिखना ही है। तो वो रोड लाइट, ब्रुज कोटी के बाहर रोड लाइट है, वहां जाके उन्होंने लिखा, फिर उसको ठीक किया, करेक्शन किया। ऐसे उनको 4 बज गया, 4 बजने के बाद आए कमरे में, नहा धोए, फिर सुबह फिर मुरली हुई। मुरली के बाद बाबा उनको साथ में लेके जंगल में, उस समय बाबा के साथ घूमने वॉकिंग करने जाते थे, वहां गए, सब लोग बैठे थे, बाबा डिस्कस कर रहे थे। तो वो जो चार पांच लोग थे ना दूसरे, अंदर अंदर देखो ये रात भर जगता रहा, बाबा तो अभी तक पूछा ही नहीं, सुबह भी नहीं पूछा, अभी भी नहीं पूछा। फिर वहां पूरा होने के बाद लास्ट में बाबा ने कहा, बच्चे वो रात को मैंने काम दिया था ना, तो सब एक दूसरे को देखने लगे, अरे, तो सब लोग बोलते, बाबा उन्होंने लिखा है, उन्होंने लिखा है, मतलब जगदीश भाई की तरफ उंगली देख। तो उन्होंने दिया, बाबा ने पढ़ा, बाबा ने उस समय उनको ये वरदान दिया कि आज से तुम इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के मुख्य राइटर, मुख्य संपादक रहोगे। तो ज्यादातर भाई साहब का लिखना पढ़ना ये होता, तो दिल्ली ज्यादा रहना होता था, और मधुबन में आते थे, मीटिंग होती थी, कुछ दादी के विशेष कुछ काम होता था, आते थे, और ज्यादा करके वो दिल्ली में ही निवास स्थान होता था उनका।
बहुत सुंदर। तो पहली बात, आपने भाई साहब का प्यार के बारे में सुना कि बाबा से इतना प्यार था कि वो उन्होंने पहली बार ट्रेन में 3 बार चढ़े 3 बार उतरे, और फिर लास्ट फाइनली, नहीं नहीं भगवान ने हमें आज्ञा दी है तो हमें जाना ही चाहिए। और दूसरी, आपने कितनी सुंदर प्रेरक कि आज्ञाकारिता किसने कहा है, भगवान ने हमें ये आज्ञा दी है, कोई मनुष्य ने नहीं, तो ये हमें करना ही है। और जब हम आज्ञा पालन करते हैं तो बाबा से कितना बड़ा वरदान मिल जाता है। तो जैसे कि हम परिचय में एक बात सुना कि बाबा जगदीश भाई को भिन्न भिन्न टाइटल देते थे कि ये संजय है, गणेश है, दधीची है, तो ये टाइटल बाबा उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए देते थे, कहते थे, या कोई प्रैक्टिकल में कुछ वो करते थे तब बाबा कहते थे?
जगदीश भाई की विशेषता थी, क्योंकि जितने भी यज्ञ के छोटे मोटे प्रॉब्लम होते थे या टीचर बहने होती थी, कुछ न कुछ बातें होती थी, तो कहीं भी उसका निर्णय नहीं होता था तो वो जगदीश भाई के साथ पास, मतलब दिल्ली जाते थे, उनके पास जाते थे प्रॉब्लम लेके, इसको क्या करना चाहिए, तो वो आराम से उनका प्रॉब्लम सुनते थे। सुन के फिर दूसरा ग्रुप आता था, उनको भी सुनते थे। तो हमारी जो साधना बहने है दिल्ली की, वो बताती है कि कभी वो इधर की बात उधर नहीं, उधर की बात उधर नहीं, नहीं हम बोलते अरे वो बहने तो तुमको ऐसा ऐसा बोला, तुमने ये किया, ऐसा नहीं, वो सुनते थे, समाते थे। तो ये समाने का जो टाइटल जो है ना गणेश जी का, तो उनके अंदर समाने की शक्ति बहुत थी। ऐसे नहीं कि कहीं भी तुम्हारे लिए इसने बोला उसने ये बोला, ऐसा कभी नहीं। और संजय तो थे राइटर, संजय आपको या पता होगा या आपने पढ़ा होगा, सबसे पहले एक 10-15 पेज का एक किताब बना था सबसे पहले। तो उन्होंने बहुत उमंग उत्साह से बाबा के पास लेके गए, बाबा ये किताब, बोला अच्छा बच्चे इसको है ना सब दादियों को दिखा दो और कुछ करेक्शन होगा तो करो। तो वो सबके पास जाते थे तो सब जो है ना करेक्शन करते थे, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं, ऐसे 10-12 लोगों तक करेक्शन हो गया, 10-12 मम्मा को भी दिखाया, सभी को। तो लास्ट में क्या हुआ, जो उन्होंने लिखा था वो मटेरियल ही खत्म हो गया जो उन्होंने लिखा था ना वो तो रहे या नहीं, वो करेक्शन 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 में रह गया। तो लास्ट में उन्होंने बाबा के पास लेके गए, बाबा ऐसा ऐसा करेक्शन हुआ है ऐसे ऐसे। तो बाबा ने कहा बच्चे जो तुमने पहले लिखा था ना वही प्रिंटिंग करना, बाकी को छोड़ दो जो पहले तुमने, और अभी मुझे भी पूछने की जरूरत नहीं, तुम जो लिखेगा सही लिखेगा। तो वो संजय का टाइटल जैसे ना त्रिकालदर्शी बाबा से जो शक्ति है, और दूसरा टाइटल दधीची ऋषि, मतलब उनके अंदर काम की भावना इतनी थी, सेवा की भावना इतनी थी, वो साधना नहीं, साधना साधन के पीछे नहीं पड़ते थे। आपको पता होगा उनका पर्सनल गाड़ी नहीं थी, अंत तक पर्सनल गाड़ी नहीं थी, उनका सिर्फ मधुबन में रूम था, ज्ञान सरोवर में, शांतिवन में नहीं। वो शांतिवन में कहीं मीटिंग में जाते थे ना वो गाड़ी में सोते थे, यहां आते थे गाड़ी में रिलैक्स होते थे, अलग रूम नहीं लेते थे। तो ये वो बहुत त्यागी और तपस्वी, और जो सेवा जो दादी जी ने या बाबा ने जो सेवा दी, शुरू शुरू में जब ज्ञान में चले तो बोलते थे कि हमारी बहनों को बहुत गर्मी लगती थी, तो एक कोई फैक्ट्री थी वो पहचान वाला था, तो वहां से बर्फ की शीला उठा के सिर पे लाते थे बहनों के लिए ठंडा पानी पिलाने के लिए। तो कर्मणा सेवा लिखने के तो थी, साधन नहीं थे, और दो मिनट बाबा को इस प्रकार वो सेवा में इतना मगन रहते थे। और एक बार हमारी चक्रधारी दीदी ने बताया कि जब वो लिखना शुरू करते थे, उनको कभी वो चाय पानी या कुछ फल बल देते थे ना, ऐसा पड़ा रहता था, लिखते रहते, वो भूल ही जाते थे। तो इस प्रकार उन्होंने अपनी जो सेवा किया, और बाबा के प्रति, क्योंकि बाबा यहां से बोलते थे बच्चे ये किताब इतने दिन में बन के तैयार होना चाहिए, तो जाके प्रिंटिंग प्रेस में जाना, एक रात दिन वही चलता था। जैसे अभी बताया ना बाबा के प्रति उनका इतना प्यार था, वो एक बात मुझे याद आती है कि साकार बाबा दिल्ली गए थे, तो दिल्ली और जहाँ वो कमला नगर था काफी दूर था, तो स्टेशन गए तो देखा ट्रेन ही नहीं है, तो इतने में देखा मालगाड़ी जा रही है, मालगाड़ी जा रही है, मालगाड़ी धीरे धीरे जाती है। अभी बाबा का मतलब सुबह का क्लास है, मुरली क्लास, बाबा मुरली चलाने वाले, मेरा मिस न हो जाए। तो दौड़ते 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 वो पीछे वाला डब्बा होता है ना, गार्ड वाला डब्बा, उसमें उसमें बैठे वो गार्ड, उसको एक काय के लिए आता है तो एक पब्लिक वाला थोड़ी है, ऐसा करके नीचे उतारता था, वो नीचे उतारते फिर चढ़ जाते थे, ऐसे तीन बार हो गया। फिर वो गार्ड बोला, यार किसी लड़की से अपॉइंटमेंट है क्या तुम्हारा, इतना क्या तुम्हारे पड़ी हुई तुम्हारा, ये किसी चलती ट्रेन में बैठ जाता है। तो आखिर उनको मना के फिर वो चढ़े, फिर उनसे बात किया, फिर उसको ज्ञान सुनाया कि हमारे पिताश्री माउंट आबू से आ रहे और वो उनका प्रवचन है और मैं कैसे मिस कर सकता हूँ। तो वो भी बहुत प्रभावित हुआ। तो जगदीश भाई का बाबा के प्रति जो निश्चय था ना 100% था।
बहुत सुंदर। तो जैसे सुभाष भाई सुना रहे थे कि सेवा में उन्होंने अपनी हड्डियां लगा दी, मुझे भी याद आ रहा है यही हाल था। विदेशी भाई बहने थे और उन्होंने एक बात ऐसी कही जिसे उन्हें पता चलता है कि सचमुच उनके अंदर कितनी है ना सेवा के प्रति कितनी भावना और कितना उन्होंने सेवा किया। तो उन्होंने कहा, अभी मेरी 70 वर्ष की एज हो रही है और मुझे खुशी है कि मैंने 100 वर्ष का काम कर लिया है। अब सोचिए कोई अंदर में उसको इतना आत्मसंतुष्टता हो, खुशी हो कि मैंने इतना कहा, मुझे खुशी है मैंने 100 वर्ष का काम कर लिया है और बाकी अब ज्यादा दिन मैं नहीं रहूंगा, ये भी बोल दिया उन्होंने। ना संजय क्यों कहा, उन्होंने ये भी बोल दिया अब मैं ज्यादा समय नहीं रहूंगा, ज्यादा से ज्यादा 2 वर्ष। तो सचमुच वो 2 वर्ष के बाद अव्यक्त हो गए। तो बाबा ने जो कहा और उसको करके दिखाना, ये बहुत बड़ी विशेषता थी। तो भाई जी के बारे में हम सब जानते
पहले
हैं।
पहले तो इसकी जुड़ी हुई एक बात सुनाता हूँ। अच्छा। अर्जुन भाई, ये जो बाबा अव्यक्त होने के पहले जगदीश भाई जी इधर ही थे, जगदीश भाई जी को एहसास हुआ कि अभी बाबा शरीर छोड़ने वाले, बाबा को पता चल गया कि ये बच्चे को पता चल गया है। तो बाबा ने कहा, बच्चे जाओ वो किताब बनाना है वो जल्दी पूरा करो। अब बाबा की आज्ञा, चले गए। चले गए तो जिस दिन बाबा ने शरीर छोड़ा उस दिन फोन बजा। तो एक तरफ गुलजार दादी जी थे एक कमरे में, ये थे, और पहले तो फोन कंबाइंड होता था, मोबाइल तो था ही नहीं। तो पहले तो हर फोन जगदीश भाई उठाते थे, उनको पता चल गया कि ये फोन यही है करके, तो उठावे नहीं, फोन उठावे नहीं। गुलजार दादी जी ने आवाज दिया, जगदीश फोन नहीं उठा रहे। उन्होंने कुछ नहीं बोला। आखिर गुलजार दादी जी आए, फोन उठाया और वही समाचार कि बाबा अव्यक्त हो गए करके। तो जगदीश भाई जी को दिव्य दृष्टि और जो भासना होती वो भी होती थी।
बहुत सुंदर। पहले तो जब बाबा उनको कह रहे थे कि बच्चे जाओ, क्योंकि बाबा को पता चल गया था बाबा अव्यक्त होने वाले थे और जगदीश भाई को पता चल गया था कि बाबा अव्यक्त होने वाले हैं, तो जगदीश भाई के अंदर में था कि मैं यहीं रहूं। और वो जगदीश भाई का संकल्प बाबा के पास पहुंचा। बाबा ने सोचा इस बच्चे को पता चल गया है, ऐसा ना हो ये चारों तरफ फैला दे, इसको यहां से भेजो। तो बाबा ने कहा, बच्चे तुम्हें कोई काम नहीं है क्या यहां पर बैठे हुए हो? कहा, बाबा मुझे यहीं रहने दो, जो कुछ काम है मैं कर यहीं से कर दूंगा। बाबा को लगा ये पक्का इसको पता चल गया आप बता देगा। बाबा ने सख्ती से बोला, तुम्हें जाना ही है ना। और कहा, जैसे सचमुच जिस दिन पहुंचे उसी दिन फोन कि बाबा अव्यक्त हो गए। तो कैसे सचमुच जो संजय बाबा कहा करते थे हर एक प्रैक्टिकल उनके जीवन में दिखाई पड़ता था। मैंने ये भी सुना कि भाई साहब टाइम के बड़े पंक्चुअल रहते थे, किसी भी प्रोग्राम में ना वो खुद लेट होते थे और कोई लेट होता तो उन्हें अच्छा नहीं लगता था। तो समय के संदर्भ में हम कुछ जानना चाहेंगे कोई प्रसंग।
जगदीश भाई जी सचमुच समय के बहुत पाबंद रहते थे। एक बार वो दिल्ली से आए थे तो प्रकाशमणि दादी जी ने कहा, जगदीश भाई हमारे मधुबन निवासियों के साथ बैठो ना थोड़ा, रात का क्लास। तो सब 9 से 10 क्लास होता था मधुबन में, तो दादी को कभी मना नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने कहा जी दादी, तो क्लास में हां भर दिया, वो बोर्ड पे लिख दिया क्लास है फलाना है। वो बराबर 9 बजे संदल पे बैठ गए, देखो 9 बजे संदल पे बैठ गए, गीत बजना शुरू हो गया। क्लास में कोई भी नहीं था, एक माइक वाला था, है ना, जैसे यहाँ भी देखो ना हम लोग देखते ना माइक
हम
वाला
होता है ना कि अभी 5 मिनट रहे टाइम पर ही पहुंचेंगे।
देखो माइक वाला ये वीडियो वाले ये पहले टाइम पे होते हैं, तो वो बेचारा पहले से अपना गीत बजाया, गीत पूरा हो गया और भाई जी ने माइक हटा दिया और अपने कमरे में चले गए। जैसे कमरे में चले गए मधुबन में सब आवाज हो गई, जगदीश भाई आए और क्लास नहीं चले गए, सब दादी तक पता चल गया। तो वो तो काम पूरा हो गया, लेकिन उसके बाद जब भी जगदीश भाई जी का क्लास होता था 10 मिनट पहले ही मधुबन निवासी पहुंच जाते थे। तो देखो एक तो दादी जी की आज्ञा का पालन किया और दूसरा अपने कर्म से वो सामने वालों को सिखाया टाइम पे पहुंचना चाहिए। ऐसे एक हमारी जो पुष्पा बहन पुष्पा दीदी है पांडव भवन की, उन्होंने पूछा भाई साहब हम कितना भी तैयार होते कितना भी करते तो भी हम टाइम पे पहुंच नहीं पाते, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाता है, आप तो एकदम एक्यूरेट 10 बजे बोलो तो आप 10 बजे बराबर पहुंच जाते, ये कैसे संभव होता है आप? तो उन्होंने कहा मेरी बहन संभव हो सकता है, जब मुझे पता है कि इसको 1 घंटा लगता है यहां से पांडव भवन जाने तक, तो मैं 1.5 घंटा मतलब आधा घंटा एक्स्ट्रा निकलता हूं, समझे, 1 घंटे का ट्रैवल है तो 1.5 घंटा पहले। तो जब वहां नजदीक आते सेंटर के पास, अभी हम पहुंचने वाले 5 मिनट में, तो वहां कहीं पेड़ आदि कहीं होता है ना, तो वहां गाड़ी रुकाते, फिर गाड़ी में अपना काम करते, कुछ लिखाई पढ़ाई ये सब करते, और जैसे ही टाइम हो गया वो सेंटर
पहुंच जाते थे टाइम पर।
तो वो कहते थे कि मैं अगर जल्दी आ जाऊंगा, तो वो बोलते जल्दी क्यों नहीं आते, बोला मैं जल्दी आऊंगा तो फिर आप चाय बनाएंगे पानी पिलाएंगे ये करेंगे, जो काम के लिए तो काम होगा ही नहीं, तो इसलिए मैं दूसरों को सिखाने के लिए मैं खुद टाइम पे आता हूं पंक्चुअल, तभी तो मैं दूसरों को सिखा सकता हूं। ऐसी और एक बात हुई हमारे दुबई के महेंद्र भाई, वो आए जगदीश भाई जी से मिलने के लिए, दुबई से आए मधुबन, मधुबन से दिल्ली गए, शायद उस समय शक्तिनगर सेंटर था, तो उनको 10 बजे का टाइम दिया, तो वो भी उस हिसाब से निकले पांडव भवन से, 1 घंटा लगा तो ट्रैफिक इतना था, पहुंचे 11 बजे। अब 11 बजे पहुंचे तो उनका 11 बजे दूसरा मीटिंग था जगदीश भाई जी का, तो उन्होंने टोली दिया भाई आपका टाइम पूरा हो गया चलो। तो उसको इतना दुख हो गया, मैं दुबई से इतना दूर से आया, फिर उनका फ्लाइट था चले गए, वो मन में बात पड़ी रही। तो देखो बाबा हर बच्चे की कैसी आशा पूरी करता है मैंने देखा। एक बार क्या हुआ, वो मधुबन में आए थे जगदीश भाई और वो भाई भी इधर आए थे, और अचानक उनका वापस जाने का प्रोग्राम बना जगदीश भाई जी का, तो वो ट्रांसपोर्ट में आए और वह ट्रांसपोर्ट वाले भाई को बोला भाई अहमदाबाद कोई जा रहा है क्या, फ्लाइट से जाना था अहमदाबाद कोई जा रहा है क्या, तो उस इतनी गाड़ियां बिड़िया तो थी नहीं उस समय, तो उन्होंने कहा एक टैक्सी है आप टैक्सी में जाओगे, हाँ चला जाऊंगा। वो टैक्सी में बैठ गए, तुरंत ही बैठ गए, सामान तो इतना था ही नहीं उनके पास। तो भाई था वो बाबा के कमरे में गया था, बाबा के कमरे में जाके वापिस आया, आगे वाली सीट पे बैठ गया, गाड़ी चल शुरू हो गई, यहां से आबू रोड तक गई, आबू रोड से आगे चल गई। उसके बाद वो भाई ने पूछ कौन आया, ऐसा पीछे मुड़के देखा तो देखा अरे जगदीश भाई, ऐसे एकदम उसके मुख से निकल गया, जगदीश भाई आप, वो इतना खुश हो गया, भाई साहब मैं तो आपके साथ सिर्फ 10 मिनट के लिए मिलने के लिए आया था, लेकिन आज आप मेरे साथ 5 घंटा रहेंगे। तो 5 घंटा उनके साथ वार्तालाप, उनके अंदर जो भी प्रश्न थे सब कुछ उन्होंने अहमदाबाद जाने तक। तो ये होती बाबा की कमाल, बाबा अपने बच्चों का दिल कैसे पूरा करता है वो हमने प्रैक्टिकल देखा।
बहुत सुंदर, अंदर की इच्छा बाबा ने पूरा किया। तो जैसा कि हमने एक परिचय में सुना कि भ्राता जी बहुत बड़े लेखक थे, मुख्य संपादक थे, मुख्य प्रवक्ता थे, यज्ञ के वरिष्ठ भाई थे, तो ये सब बातें जो उनके जीवन में आई वो उन्होंने खुद मेहनत की या बाबा से वरदान मिला, ये वरदान था या उनकी खुद की मेहनत थी?
ऐसे तो जब कोई मेहनत करता है तो वरदान मिलता है।
बहुत सुंदर
है ना। अगर आप मेहनत से कोई भी काम आपको दिया कि भाई आप परफेक्ट काम किया, अच्छा किया, तो बड़े लोग आपको ब्लेसिंग देते हैं, तो बहुत अच्छा है करके ब्लेसिंग। तो जितने भी जगदीश भाई जी को जो भी बाबा ने, दादियों ने जो भी जिम्मेवारी दी, बड़े बड़े मेले दिल्ली में हुए, बड़े बड़े प्रोग्राम हुए, जो भी जिम्मेवारी थे वो दिल से और अथक होके करते थे। इसलिए उनको एक तो बाबा के प्रति और बड़ों के प्रति बड़ा निश्चय रहता था। और ज्यादा करके उनके साथ गुलजार दादी जी ने भी सेवा की। मुझे एक बात याद आती है, क्योंकि यज्ञ में संपन्नता नहीं थी उस समय, गाड़ी कार भी नहीं थी। तो एक किस्सा बताते कि कोई मिनिस्टर को मिलने जाना था, तो बहनों को तैयार होने में टाइम तो लगता है, तो बस अभी समझो 10 बजे है, तो जगदीश भाई फटाफट तैयार होके बस के सामने खड़े हो जाते थे। बस के सामने खड़े होने के बाद वो 2-3 बहनें आती थी, फिर धीरे धीरे वो बहनें भी दौड़ती थी, साड़ी पहनने की इतनी आदत नहीं होती थी, वैसे साड़ी पकड़ के पहुंच जाती थी। तब तक जगदीश भाई जी बस के सामने खड़े रहते थे, फिर बस में बहनों को पहले चढ़ाएंगे फिर लास्ट में चढ़ेंगे। अब मिनिस्टर के पास गए, क्योंकि बोलने में बहुत होशियार थे, अपॉइंटमेंट मिलती थी। तो वहां जाने के बाद, देखो ये सीखने की बात है, वहां जाने के बाद वो जो बहनें साथ में होती थी ना, उनकी वो खूब महिमा करते, ये देवी आए, सरस्वती देवी है, भगवान ने संदेशवाही का भेजे आपके पास ऐसे। तो मिनिस्टर तो बहुत खुश हो जाता था, ये सचमुच देवियां मिलने आई है, हमें भी ये मतलब सीख सकते हैं कि भाई हमको जब कोई VIP को मिलाने जाना तो हम हमारे साथियों को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, महिमा करना चाहिए। अभी इतना वो इम्प्रेस्ड होते थे मिनिस्टर आदि जो VIP है, तो वो बाहर तक छोड़ने के लिए आते थे। अब बाहर छोड़ने के लिए बोलते थे आपकी गाड़ी कहाँ है, अब गाड़ी तो होती नहीं थी, गाड़ी तो जगदीश भाई साहब बोलते ऐसा है ना, हम थोड़ा ट्रैफिक है ना, तो थोड़ा दूर खड़ी करके रखी है उधर, ऐसे युक्त। फिर वो जाके अपना बस में जाके फिर ऐसे, मतलब सामान भी ऐसा नहीं कि हमारे पास गाड़ी नहीं, ये भी नहीं, सामान भी, हम भगवान के बच्चे, लेकिन साथ साथ युक्त भी वो चलते थे। तो इस प्रकार उनका मतलब व्यवहार, प्यार, स्नेह और बाबा के प्रति निश्चय 100% था।
बहुत सुंदर। तो युक्ति युक्त सेवा कैसे होती है। यज्ञ में भाई साहब को सभी बहुत ऊंची नजर से देखते थे, दादियां, सभी सीनियर, सभी भाई बहने, तो इसके पीछे माना क्या राज था सब, है ना? जैसे वो तो खैर देखते ही थे, लेकिन सारे लोग भाई साहब के प्रति बहुत प्यार, बहुत ऊंची दृष्टि, बहुत सम्मान की भावना, तो इसके पीछे कोई सीक्रेट?
देखो इसमें एक तो हमने देखा जगदीश भाई कभी ये नहीं समझते थे कि ये छोटा है ये बड़ा है, बोलते ये मेरा भाई, ये सारा परिवार मेरा है। मुझे याद है यहाँ कल्चरल विंग की कॉन्फ्रेंस थी, इसी हॉल में पुरुषोत्तम जलोटा जी आए थे, तो मैं खाना खिला के आ रहा था, दौड़ते दौड़ते आ रहा था, तो जगदीश भाई वहां टहल रहे थे। रात को 10 बजे की बात है ये, तो उन्होंने पूछा मुझे यहां से पांडव वन कितना दूर है, मैंने कहा 4 किलोमीटर है। अच्छा मैं जा सकता हूँ? मैंने कहा जा सकते, नहीं मैं पैदल जा सकता हूँ, कोई जानवर आदि तो नहीं होते। मैंने कहा रात को 10 बजे आप कैसे मैं ड्राइवर को बुलाता हूँ। बोलते नहीं नहीं मेरे वो भाई को नहीं, उसका महादेव नाम था, उसको नहीं बुलाना, मैं उसको कल्चरल प्रोग्राम देखने के लिए भेजा है, उसको बीच में नहीं उठाना। फिर थोड़े देर में क्या हुआ, वो भाई आ गया, आ गया तो जगदीश भाई जी बैठ गए, तो बोलते अच्छा रुको। बोले क्या भाई? नहीं अभी गाड़ी तो खाली है ना, गाड़ी में फुल करके
और भी लोग आ जाएं,
और भी लोग आए। तो गाड़ी जब फुल हुई तब वो यहां से निकले। तो एक तो ड्राइवर होते हुए उसके प्रति प्यार सुनिए कि वो प्रोग्राम के लिए, और दूसरा ये जो मेरे भाई बहने हैं, मेरे साथी हैं, वो कैसे जाएंगे, उनको भी साथ ले चलो। तो उनके कहावत है कि जगदीश भाई की गाड़ी कभी खाली नहीं रहती थी, भरी रहती थी। तो ये उनके अंदर भावना थी, इतना प्यार था अपने परिवार से, ईश्वरी परिवार से।
हाँ कभी उनको ये नहीं कि मैं बहुत बड़ा सीनियर हूँ, वरिष्ठ भाई हूँ, तो ऐसा नहीं कि नहीं, सब सबको एक सब जैसा, एक सब सबके
ऐसे, मतलब दादी के प्रति भी, बड़ों के प्रति भी, जो भी होते। अब बड़ी दादी ने बोल दिया कि भाई आपको ये करना है, तो जी दादी। यहां तक कि आपको याद होगा कि एक बार अव्यक्त बाबा नीचे डायमंड हॉल में आए थे, तबीयत खराब थी, तो बाबा ने क्या डांस करो, तो
गणेश डांस,
तुरंत ही गणेश डांस ऐसा हाथ करके डांस करना शुरू कर दिया उन्होंने। तो ये उनके अंदर बाबा, क्योंकि भगवान ने आज्ञा दिया, बाबा ने आज्ञा दिया, वो बहुत उनके प्रति प्यार था, इसलिए सब उनको प्यार करते थे।
एक बात और जानना चाहेंगे कि जो बाबा कहते थे ये बच्चा दधीचि ऋषि है, और सचमुच उन्होंने अपनी है ना हड्डी हड्डी बाबा के यज्ञ में लगाया, स्वाहा किया, तो ऐसे सेवा के प्रसंग में और कोई विशेष अनुभव हो?
वैसे तो उनके सेवा के प्रसंग बहुत है, जैसे दिल्ली वाले जानते होंगे, मैं सुनता प्रगति मैदान में कहीं बहुत बड़ा मेला था, और बाबा ने कहा कि अंधों को भी आईना दिखाओ, इसका मतलब इतने बड़े बड़े चित्र बना दो। तो भाई साहब है ना, पूरा दिन वार कुछ व्यवस्था नहीं होती थी, तो कार में बैठे बैठे तबीयत भी खराब, वो उनका लास्ट का प्रोग्राम था, मैं सुना 99 की बात होगी, तो पूरा दिन वहां ग्राउंड में रहते थे और कार में बैठे बैठे ही सबको डायरेक्शन देते थे। जब प्रोग्राम चल रहा था, कुर्सी कैसी लगानी, ये कैसे करना है, स्पीकर का होना चाहिए, ये क्या, तो ये उनके अंदर वो। और लास्ट दिनों में मुझे याद है, इसी हॉल की बात है, एक प्रोग्राम चल रहा था, और पहले तो विंग के प्रोग्राम शुरू हुए ना, तो सबके अंदर ये था कि मेरा भी नाम आना चाहिए, मेरा भी क्लास होना चाहिए, मेरा भी लेक्चर होना, सबके अंदर वो था, और वो एकदम निश्चित नहीं इनको आगे बढ़ाओ। तो मुझे याद है ये पीछे वाली लाइन है ना, वहां मैं बैठा था ऐसे, तो धीरे से है ना पीछे वाली लाइन में आके बैठे हो, मैं देखा अरे जगदीश, मैंने कहा आप आगे, ऐसे किया एकदम, मैं तो चुप हो गया,
बैठने दो
एकदम। तो बीच बीच में जैसे ना हम ताली बजाते, जैसे कोई अच्छा बोल रहा है तो ताली बजा रहे, सब कुछ कर, मतलब एकदम साधारण जैसे ना श्रोता बन के बैठे, कोई ये नहीं कि मैं बड़ा हो ये हो, खुशी हो रहे उनको सामने वालों को देख, तो वो उनके अंदर वो चीज थी। और मुझे इतना खुशी कि मैं भाई साहब के साथ, मेरा भोजन रखने का टाइम हुआ तो भी मैंने कहा जाने दो अभी 10 मिनट और बैठ जाते, तो तब जब वो उठे तो उन्होंने मुझे थैंक यू दिया, मतलब आपने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया, थैंक यू दिया,
आराम से बैठने दिया,
आराम से बैठने दिया, और किसी को बताया भी नहीं जगदीश भाई उधर है, कोई बताते तो आ गया आ गया। तो कोई भी सेवा होती थी, कहीं भी होती थी, ज्ञान सरोवर शुरू हुआ था उस समय भी उनका, मतलब पूरा प्लानिंग बुद्धि, जहां हम बैठे हैं ज्ञान सरोवर, उनकी ही एक संकल्पना है ये जो वर्गीकरण की सेवा। क्योंकि क्या होता था, पहले कॉन्फ्रेंस होती थी, आते थे लोग चले जाते थे, तो उनके माइंड में आया कि अगर वर्गीकरण करे, डॉक्टर अलग आए, बिजनेसमैन अलग आए, मीडिया वाले अलग आए, तो उस हिसाब जो ट्रेनिंग सेंटर बनाया उसी हिसाब से बना हुआ है, फिर सारे लोग एक साथ आके प्रोग्राम करें, तो ये जो एकेडमी जो बनी है वो उनके बहुत सारे डायरेक्शन इसमें काम आए हैं और उनकी संकल्पना है। तो और मैंने एक चीज देखा, दादी का बहुत भरोसा रहता था इनके ऊपर। दादी इनके बिना पूछे काम नहीं करती थी, मतलब करती थी, लास्ट में जगदीश भाई जी कैसे करना, ऐसे बहुत रिस्पेक्ट से। तो ये विशेष
बहुत सुंदर। तो एक बात जो आपसे खास जुड़ी हुई है, आप भोजन खिलाने की सेवा करते थे, अभी भी कर रहे हैं, तो हमें बताइए कि जब जगदीश भाई जी भोजन करने आते थे, मैंने सुना कि जगदीश भाई बहुत शांति में, एकांत में, बाबा की याद में भोजन करते थे, ऐसा हमने सुना। लेकिन मुझे संकल्प आ रहा, जैसे कभी कॉन्फ्रेंस आदि होता था, वीआईपी आदि होते थे, उनके साथ भी बैठना पड़ता था, तो ऐसे समय पर वो क्या करते थे?
उनका नियम तो पक्का था साइलेंस में भोजन करना, मतलब अगर बड़े गेस्ट आए तो भी बैठते थे लेकिन साइलेंस में। लेकिन नॉर्मली रूटीन में उनका ये होता था कि भोजन लिया उसके बाद बात नहीं करते थे और दूसरा कुछ लेते भी नहीं थे। पकौड़ा अच्छा लगा तो और दो पकौड़ा ले लो दोबारा, गुलाब जामुन अच्छा लगा और ले लो। तो एक बार क्या, हमारे एक यूएसए की बहन आई अमेरिका से और भाई साहब ने खाना लिया और बस भोजन शुरू करने वाले थे, इतने में आए भाई साहब, अमेरिका में ये चल रहा है वो सुनाती जा रही। तो उन्होंने खीर बोला, बहन जी ओम शांति, मैं अभी भोजन कर सकता हूँ? तो अरे भाई साहब करो, मतलब उसको पता नहीं था। तो उसने आज्ञा लिया, अभी भोजन करूं मैं। तो उन्होंने भोजन शुरू, और मैंने देखा वो भोजन इतना बाबा की याद में प्यार से, और एक बार उसका भोग लगाया ना, फिर दूसरा भोजन नहीं लेते थे और थाली एकदम साफ। इतना
अब जैसे आप भोजन देने पहुंच जाओ तो
नहीं ऐसे है, तो बहुत रिस्पेक्टफुल ऐसे करते उनका, मतलब आप ज्यादा फोर्स भी नहीं कर सकते ऐसे। और जब भोजन पूरा होता था तो जो काउंटर पे लोग होते ना, तो जरूर थैंक यू बहन, बहुत अच्छा,
धन्यवाद देना नहीं भूलते,
धन्यवाद देना भूलते नहीं थे। तो ये उनकी बहुत बड़ी विशेषता, ब्रह्मा भोजन के प्रति बहुत रिगार्ड रिस्पेक्ट।
देखो ये सब सीखने की बात होती है, हम भी कई बार हमारे अंदर, आज हम मौन में बैठेंगे और कोई आ गया ना सामने कोई दोस्त, तो हम भूल ही जाते हैं कि हम मौन का संकल्प करके बैठे थे। बाद में जब भोजन पूरा बात हो जाती है तो याद आता, अरे हम तो संकल्प किया था मौन में, तो सारा समय बातें ही हो गई। तो ये सीखने की, मना भी करना है तो कैसे प्यार से कि उसको लगे भी ना। एक ऐसा कोई भाई जी के बारे में आप सुनाइए कि जो आपके दिल को छू गया हो, जो कभी आपको भूलता नहीं हो, कोई ऐसा प्रसंग।
भाई साहब के साथ तो बहुत सारे प्रसंग, क्योंकि मिलते रहते थे। एक बार क्या हुआ कि दादियां मतलब कितना रिगार्ड देती थी, रिस्पेक्ट करती थी, वो मैं समझता हूं मतलब शरीर छोड़ने के कुछ दिन पहले की बात है। प्रकाशमणि दादी जी ने कहा कि हमारे पांडवों को मिलो ना, तो उन्होंने हाँ बोल दिया। सुखधाम में रहते थे उस समय, सुखधाम से दादी जी लेके आई हाथ पकड़ के, मेडिटेशन हॉल की बात है, मत पांडव बन के हाथ पकड़ के लेके आई, और उन्होंने सुनाना शुरू किया, देखो मेरी हालत क्या है, मैं तो चल भी नहीं सकता हूँ लेकिन दादी की आज्ञा मैं नहीं टाल सकता हूँ, दादी की आज्ञा मैं नहीं टाल सकता, इसलिए मैं अपने परिवार से मिलने के लिए आया हूँ, मैं क्लास कराने नहीं आया हूँ। उसमें एक उन्होंने बात बताई कि मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि मैं बाबा को प्रत्यक्ष नहीं कर पाया, बाबा को प्रत्यक्ष नहीं कर पाया, ये जो मेरा काम जो है अधूरा काम है वो आप सबको पूरा करना है। और फिर वो आगे मतलब बोल नहीं पाए, उनके मतलब दिल भर आया, तो दादी जी बाजू में थी, दादी जी ने अपने बाहों में लिया और कहा हम सभी आपकी जो आशय पूरी कर देंगे। सभी ने मतलब एकदम तालियां बजाने के भी अंदर किसी को हिम्मत नहीं हो रही थी, इतना मतलब वो सीन कभी नहीं मैं भूल सकता हूँ।
वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। तो आप सोचिए, हमें तो जरा भी कुछ हो जाता है, अरे ठीक तबीयत नहीं ठीक, लेकिन उनका तबीयत ठीक ना होते हुए भी ठीक से बोल नहीं पा रहे थे, चल नहीं पा रहे थे, लेकिन दादी ने कहा तो बस हाँ वो करना ही है। तो सचमुच बड़े आज्ञाकारी। तो एक बात हम सभी जानते हैं कि भाई साहब का जीवन बहुत सादगीपूर्ण जीवन था, जो कहावत भी है ना, सादा जीवन उच्च विचार, ये भाई जी के जीवन मना देखने में आता था जीवन में। तो सादगी से संबंधित कोई ऐसी प्रसंग,
एक बार क्या हुआ, बनारस में कॉन्फ्रेंस थी, तो बाबा ने डायरेक्शन दिया बच्चे बनारस में पहुंच जाओ, वहां सम्मेलन है, संत सम्मेलन ऐसा कुछ था। तो वो दिल्ली में लिटरेचर आदि सब बनाया, पूरा पूरा दिन उन्होंने सारा तैयार करके, रात का ट्रेन था बनारस के लिए, और ट्रेन में बैठ गए। अभी उस समय तो ये एसी नहीं, ये वो कुछ नहीं होता था, एक थैला था साथ में, एक रजाई साथ में। तो क्या हुआ, ऊपर ऊपर वाली ये है ना स्लीपर, ऊपर सो गए, तो इतनी गहरी नींद थी, इतनी गहरी नींद थी, तो वो ऊपर से लुढ़क गए, मतलब नीचे गिर गए। अब नीचे गिर गए तो नीचे सुबह सुबह का टाइम था, वो चाय पी रहे थे, वो चाय कप है ना टूट गई उनकी। तो उनको महसूस हुआ कि भाई अब ये नुकसान नुकसान भरपाई देना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, जोर से चिल्ला, अरे बाप रे, जोर से चोट लगी, चोट लगी। तो क्या हुआ, वो सभी दे, नहीं नहीं भाई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं करके अब वहां से वो ट्रेन से उतरे तो सेंटर पे जाना था, तो बहनों ने उनको एक रुपया दिया था रिक्शा के लिए। अब वो रिक्शा वाला दो रुपए मांगे, अब पैसा ही नहीं जेब में, देखो पैसा ही नहीं जेब में। तो थोड़ा और पैदल चले गए, थोड़ा अलग आगे चले, तो फिर वो एक रुपए में तैयार हो गया,
एक रुपए में रिक्शा मिल जाए,
पैदल एक रुपए। अब जैसे रिक्शा में बैठे ना, तो पायजामा पुराना था, पुराने स्टॉक तक कर करके आवाज है, पायजामा फट गया। अब क्या हुआ, एक थैली ऐसे बगल में लिटरेचर, इसमें एक इसमें रजाई और एक हाथ से पायजामा पकड़ा हुआ, चले सेंटर पे पड़ा। जैसे सेंटर पे रूम पे गए, वो सुई धागा रखते थे, देखो हम लोग भी सीख सकते, सुई धागा अपने साथ
कहीं
रखते
फट
थे,
जाए तो सिलाई कर लो
तुरंत, तो तुरंत जाके वहां अपना, क्योंकि दूसरा था ही नहीं ना, तो वो फटाफट फटाफट सिलाई भी कर दिया, पहन भी लिया। तो इतना साधारण और कोई भी मतलब एक रुपए, देखो क्या चीज होती है, एक रुपया उनको ऑटो के लिए मिला, टिकट मिला होगा, वो टिकट से वहां पहुंचे। तो इतना साधारण होते हुए, लेकिन जब वो प्रवचन करते थे, जब वो भाषण करते थे, तो सब लोग आते थे, भाई ये बहुत बड़ा वक्ता है, बहुत बड़ा। यहां तक कि उन जो दिल्ली में उनके ऑफिस में मिलने आते थे लोग, तो सेंटर पे जाते थे, भाई वो जगदीश चंद्र हसीजा कौन है, उनको मिलना है। तो उनको बहनों को तो पता है, ऊपर तो खटिया पड़ी है, कोई ऑफिस वॉफिस है ही नहीं। तो बोलते थे, वो जगदीश भाई ने बोलते थे कि वहां जो क्लास चलता है ना वही मिलेंगे। नहीं नहीं हम उनके वो ऑफिस में चलेंगे, नहीं नहीं वो आपको मिलने इधर ही आएंगे करके। तो उधर जाके मिलते थे और बड़ी महिमा सुनाते थे, आपका आर्टिकल इतना अच्छा है, हमें और चाहिए, फलाना चाहिए। तो इतने साधारण जीवन में उन्होंने इतनी ऊंची प्राप्तियां, बाबा का नाम बाला किया।
बहुत सुंदर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जगदीश भाई जी मुरली का बहुत महत्व रखते थे और दूसरों को भी मुरली के महत्व के बारे में समझाते थे। तो मुरली का महत्व, कोई एक प्रैक्टिकल कोई ऐसी घटना प्रसंग हम जानना चाहेंगे।
उनको मुरली के प्रति बहुत प्यार होता था, मुरली की स्टडी जब भी टाइम होता था मिल करते थे, और विशेष करके हम क्या बोलते हैं, आचा दीदी ने मुरली सुनाया, दादी ने मुरली सुनाया तो बहुत अच्छा है। वो रोज है ना एक छोटी सी कुमारी होती थी, वो सुनाती थी, वो भी उसी रिगार्ड किसके महावाक्य, भगवान महावाक्य सुना रहे, इस मगन में उस अवस्था में सुनाते थे। और फिर जब मुरली पूरी होती थी तो क्या करते थे, जब क्लास में लोग आते थे ना शक्ति नगर में या जहां सेंटर पे रहते थे, तो वो बाहर बैठते थे, बाहर मतलब दूसरों की मुरली नहीं मिस होनी चाहिए, तो वो सबको मुरली में बेचते थे। एक बहन क्या हुआ, वो मुरली याद प्यार न बसते हुआ उस कुछ लास्ट वाला रहता ना, वो नहीं सुना, वो किचन में चल गई। जगदीश भाई जी को पता चला कि ये किचन में, तो उन्होंने फोन किया, इंटरकॉम होता था ना, फोन किया, तो बहन ने उठाया तो बोला कौन बोल रहे, तो वो बोला कि मैं लता बोल रही हूं, या जो भी बहन होगी उस समय। तो भाई साहब ने कहा कि सबसे पहले अपने को वैल्यू देना सीखो, लता बहन भी बोल सकती है ना, हाँ फलाना भाई बोल सकते हैं ना, अपना सिंगल नाम मतलब खुद को वैल्यू दो तो दूसरे आपको वैल्यू देंगे। तो इस प्रकार बाबा जो मुरली की रीड करना और उसके ऊपर चलना 100% वो जगदीश भाई से सीखना चाहिए, और पूरा की पूरा उसको अमल करना। और जब उनका जो क्लास था, मैंने मुझे याद है जब भी वो क्लास कराते थे वो पर्ची जरूर लेके आते थे। हम लोग तो इतना विद्वान है इतना है ऐसे, लेकिन उनका टू द पॉइंट, वन बाय वन, उनको पता है कि ऐसा एक गचड़ गचड़ सुनाना नहीं, टू द पॉइंट होना चाहिए, एक के बाद दूसरा तीसरा। तो ये उनकी विशेषता थी कि इतने बड़े विद्वान होने के उनके अहंकार नहीं थे, बहुत ही रिस्पेक्टली
पॉइंट मिस ना हो।
हाँ, और जो मुझे सुनाना है आपको वो पूरा के पूरा आना चाहिए, ये उनके अंदर रहता था। इसलिए बाबा के प्रति आपने देखा होगा, नोट किया होगा, डायमंड हॉल में सब आगे वाले सोफे में बैठते थे, जगदीश भाई जी बाबा के सामने, लेकिन पीछे वाले सोफे में बैठते थे, बैक उस सेकंड नंबर पे, लेकिन बाबा की नजर सारी जगदीश भाई के ऊपर होती थी और जगदीश भाई की नजर बाबा के ऊपर रहती थी। इतना एक भी मतलब कोई भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए, ये उनका रहता था।
बहुत सुंदर। आगे हम जानना चाहेंगे कि जैसे एक स्लोगन आता है, कम खर्चा बाला नसीम, प्रैक्टिकल इसके उदाहरण थे जगदीश भाई जी कि सेवा ज्यादा से ज्यादा हो, खर्च कम से कम हो, तो इस संदर्भ में यदि कोई आपके पास प्रसंग हो तो हम जानना चाहेंगे।
कि उनके पास एक युक्ति भी थी कि कैसे लोगों को जोड़े, लोगों को सहज सेवा भाव हो, और कभी भी बाबा का यज्ञ का नुकसान कम से कम हो, वो पूरा प्लान करते थे। कि कई बार होता है ना, एक बार किया उसको तोड़ो, तीसरा बार तोड़ो, नहीं, एक बार परफेक्ट प्लान हो और उसके बाद उसको अमल करना, और वो समय पे होना। और जब उनको कोई चीज पसंद आती थी कि ये काम की चीज है और ऐसी बननी चाहिए, तो उसी हिसाब से उनको समझाते थे कि ये चीज ऐसे और उसका खर्चा कितना होगा। तो जब वो शक्तिनगर का जो एक मकान बना था उस समय उन्होंने बहुत ही इकोनॉमी की और उसी हिसाब से वो, और मैं समझता हूं जब तक वो मतलब वो कभी एसी ट्रेन में नहीं जाते थे, वो स्लीपर क्लास में जाते थे, राज ये अपने ये जो आती थी ना आश्रम, उसमें उनका जाना आना होता था, और सुबह सुबह स्नान करना ट्रेन में ही बाथरूम की सफाई आदि करके ट्रेन में ही स्नान करना, और कभी भी कोई बड़े होटल हाई फाई होटल में विदेश जाए, कहीं भी जाए, कहीं नहीं मतलब रहते थे। मुझे हमें एक बात है कि जो हमारे पास यज्ञ में ब्रह्मा कुमारी संस्था में इंग्लिश जाने वाले थोड़े बहुत लोग थे, जगदीश भाई जी है, रमेश भाई है, तो सबसे पहले जो एक डेलीगेशन गया विदेश यात्रा, उसमें जगदीश भाई जी थे, हमारे डॉक्टर निर्मला जी थे, रमेश भाई, रोजी बहन, उषा बहन, ये पांच लोग गए थे। अब वो विदेश गए तो मतलब लंदन जयंती बहन के घर में रहे, वहां सेवा शुरू की, क्योंकि इतना होटल में देने की पैसा ही नहीं था। तो मैंने देखा, देखो जयंती बहन के घर में वो रहे, पहला डेलीगेशन, बाबा की इतनी ब्लेसिंग हुई, आज जयंती बहन देखो मुख्य प्रशासिका बन गई। और उसके बाद अमेरिका गए, अमेरिका गए तो जिस गली में रहते थे ना वो क्या हुआ, वो चोरी होती थी बहुत, चोरी होती थी तो पैसा तो होता ही नहीं था। तो एक जगह उनको रोक दिया, वो काले लोग होते ना वो भाई $20 करने लगा। तो रोके, आप क्या करें, पैसा तो देना नहीं। तो उन्होंने बोला यू नो इंडियन डांस, बोला नो। तो उन्होंने शुरू किया डांस करना शुरू किया उधर उसके सामने डांस करना शुरू किया, उसका ध्यान भटक गया, दौड़ गए वहां से सीधा घर पहुंच गए। तो कैसे युक्ति युक्त कैसे रहते थे, युक्ति युक्त कैसे चलते थे। ऐसे ही एक बात याद है हमारे स्वदेश दीदी की, वो स्वदेश दीदी किसी माता बहनों से मिल के बात कर रही थी, वो जाते जाते थोड़ा सुन लिया था। तो क्या उन्होंने ज्ञानामृत में एक आर्टिकल लिखा, ज्ञानामृत में आर्टिकल लिखा और उसमें लिखा स्वदेश देन। अब सब लोग बहने वो समय वो त्रिमूर्ति करके चलता था, सब बोलती थी स्वदेश दीदी आपका आर्टिकल आया आर्टिकल। मैंने कहा मैंने तो लिखा ही नहीं, कैसे आया। तो एक देखा तो मेरा ही नाम है। तो एक बार उन्होंने उनको जगदीश भाई कहीं आए तो बोले जगदीश भाई जी आपने मेरा नाम क्यों लिखा, मेरा थोड़े आर्टिकल है। तो जगदीश भाई बोले नहीं वो आर्टिकल तो आपका ही है। नहीं मैंने तो दिया ही नहीं था। दिया नहीं था लेकिन आप वो माताओं के साथ बैठे थे ना तो बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान की बातें बता रही थी, वही तो बातें इसमें है। तो देखो दूसरों को भी कैसे सम्मान देते थे, आगे भी बढ़ाते थे, क्योंकि जो त्रिमूर्ति मैगजीन है उसमें आर्टिकल भी तो चाहिए, अलग अलग नाम से एक ही नाम से थोड़े होंगे। तो वो मैगजीन में भी हर चीज में कैसी कटौती, कम खर्चा बाला नसीन, वो उनके रग रग में भरा था। और खुद के तो दो चार कुर्ते होते थे बस, वही कोई जैकेट पॉकेट तो लास्ट में कहीं मिला था, नहीं तो कुछ नहीं, सिंपल ड्रेस। और एक बार कहीं गवर्नर को मिलने जाना था चेन्नई में, तो वही स्टॉक वाला कपड़ा कहीं पुराना ये वही पहन के गए। और अभी उनके पास कोई कहाँ मिलेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ दे, तो पता ही नहीं ना क्या। तो ऐसे बोला कि गवर्नर हाउस में, गवर्नर हाउस के तो इतने पत्रकार आए वहां पर और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। तो बाबा की ऐसी सेवाएं भी बहुत होती है।
अंत में हम ये जानना चाहेंगे कि जगदीश भाई जी की अंतिम इच्छा क्या थी, क्या उन्होंने क्लास में कभी ये बताया या व्यक्तिगत रूप में बताया हो या क्लास में बताया हो, क्या थी उनकी अंतिम इच्छा।
इच्छा तो थी कि मैं सब मतलब संपन्न होने के पहले कि मतलब सब अच्छी तरह से पुरुषार्थ करे, अच्छे से अच्छे बने। और जैसे बोला था कि जो बाबा को प्रत्यक्ष करना है कैसे भी करके बाबा को प्रत्यक्ष करना चाहिए। और वो एक बात मुझे याद आ रही कि लास्ट समय की बात है, वो जब जगदीश भाई ने शरीर छोड़ा तो मैं गांव में था और जगदीश भाई के तो प्यार बहुत था, तो दिल्ली से बॉम्बे से इधर से उधर से सब लोग आ रहे थे। जैसे हमारे घर में हमारे भाई को फोन आया कि जगदीश भाई जी इतना किया, जगदीश आगे वो बोल नहीं पाए, मतलब शरीर छोड़ा बोल नहीं पाए। तो मैं तुरंत तैयार हुआ, मुंबई आया और स्टेशन पे आया तो सारे सफेद सफेद कपड़े वाले। अब क्या हुआ, वहां जैसे मैं पहुंचा तो हमारे एक अनिल भाई है मुंबई के, उन्होंने कहा B1 में बैठो फलाने सीट पे। अब मुझे B1 पता ही नहीं था B1 क्या होता है, क्योंकि कभी AC में बैठा ही नहीं था। तो जगदीश भाई के कारण मैं पहली बार वो AC कंपार्टमेंट में, तो भी मैं दूसरे डब्बे में बैठा। वो भाई ढूंढते ढूंढते, अरे मैंने तो ये B1 में बोला कहा, फिर वो जो स्लीपर क्लास से उठा के मैं वहां लेके गया। तो मैंने देखा जो महान हस्ती होती, महान विभूति होती, उनके नाम से रास्ते कैसे अपने आप बन जाते, सरलता से कैसे यहां पहुंचे हम लोग। और यहां जब शमशान भूमि में पहुंचे, सारे सफेद सफेद वस्त्रधारी सब कुछ, दादी अंतिम संस्कार देने खुद प्रकाशमणि दादी आई। तो ये जो वर्णन, ये जो चीजें है कि हमारा एक इतना बड़ा बाबा का बच्चा, सबका एग्जाम्पल, सबका स्नेही, सबका प्यारा, वो वहां नजर, वो झलक वहां नजर आई। और सचमुच जगदीश भाई तो बहुत ही महान विभूति थे और उनको जैसे मैं ना बाप समान लास्ट लास्ट के दिन में उनके इच्छा थी कि मेरा शरीर मधुबन में छूटे। क्या थी इच्छा? और वो ग्लोबल हॉस्पिटल में थे तो उनके साथ योगेश भाई था। रात को 2 बजे तो उन्होंने सारा वो सलाइन पलाइन, क्योंकि उनको पता था अभी मैं शरीर छोड़ने वाला था, मुझे यहां नहीं शरीर छोड़ना है, मधुबन में शरीर। तो वो तो डर गया भाई, क्या करे क्या करे, डॉक्टर इधर, मुझे मधुबन चलना है। गए, सब निकाल दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अभी रूम में गए, आराम से बाबा की याद में शरीर छोड़ा। तो वो ये उनका मतलब हर इच्छा उनके बाबा पूरी करता, जो भी संकल्प करते बाबा उनकी पूरी करता था।
बहुत सुंदर सुभाष भाई जी ने बात बताई, और मुझे भी अंतिम दिन का एक प्रसंग याद आया कि जिस दिन उन्होंने शरीर छोड़ा, शाम के समय ही प्रकाश मणि दादी जी का क्लास था, तो मैं क्लास में गया था शाम को। तो मैंने सोचा चलो जगदीश भाई जी को भी देखते जाऊं, बीमार थे, कमरे में थे अपने, तो सुखधाम में गया। तो मैंने जो उस समय देखा कि जगदीश भाई जैसे चेहरे पर बड़ा तेज, तो मैं देख करके आया और लोगों को मैं बोला भी कि लोग कहते हैं जगदीश भाई जी बीमार हैं। कहाँ बीमार है, उनके चेहरे पर तो इतनी चमक है, इतनी लाइट है, कोई बीमारी के तो लक्षण ही नहीं दिखाई पड़ते हा? लेकिन जब दादी का क्लास सुन करके हम यहाँ ज्ञान सरोवर पहुंचे, 8:15 बजे मैसेज मिलता है कि भाई साहब ने शरीर छोड़ दिया। तो अंतिम अवस्था भी जो योगी आत्माएं होते हैं, कैसे उनके चेहरे पर वो चमक, वो दिव्यता, वो अलौकिकता, वो संपूर्णता दिखाई पड़ती है। अभी समय पूरा
एक,
हो रहा
एक
है।
चीज मुझे याद आई कि कई लोग भाई साहब को बोलते थे, भाई साहब आप बाबा को इतना याद करते हो, आप बाबा की इतनी सेवा करते हो, बाबा आपको क्यों नहीं मदद करता है, ये बहुत सारे लोग उनको क्वेश्चन करते थे। तो जो मेडिटेशन हॉल में उन्होंने ये बात बताई थी कि देखो बाबा ने दिन प्रतिदिन मुझे इशारा दिया था, लेकिन मैंने वो अपने सेवा में मगन रहा। बाबा कहते बच्चे अपना शरीर का ध्यान रखो, खाने पीने का ध्यान रखो। तो बाबा ने तो मेरे को इशारा दिया, तो इसमें बाबा का दोष नहीं, बाबा दोषी नहीं, दोषी मैं हूं, क्योंकि बाबा का जो श्रीमत है उसको मैंने पालन नहीं किया। पालन नहीं किया माना कि बाबा बोलते थे बच्चे शरीर का ध्यान रखो, तो वो लोग रात रात लिखने में रहते थे, खाने पीने का ध्यान नहीं रहता था, तो वो लीवर खराब हो गया इस प्रकार से। और लास्ट में भी उनका यही संकल्प था कि जो मेरे काम है, जो किताब है, वो पूरे हो जाए। जो एक कार्टून का किताब था, वो आत्म प्रकाश भाई को पूछा भाई कहाँ तक है, वो जल्दी जल्दी बना के ले आओ, वो बना दिया। तो जो जो भी काम अधूरे थे वो मुझे पूरे करने, तो चाहे कहीं भी हो, मतलब लेटे लेटे भी वो काम करते थे अंत समय तक। जो बोला ना दधीची ऋषि, तो लास्ट तक उन्होंने अपना तन मन धन पूरा बाबा
के यज्ञ में सहा किया।
तो ऐसी महान विभूति को हम इसलिए सुनाया कि ये मास जगदीश भाई जी का है और अभी 12 तारीख आने वाली है, तो हमें भी इन चीजों से प्रेरणा मिली,
सीखना चाहिए,
हमें भी सीखने को मिला, सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, इतना प्यार से सुना आपने।
सुभाष भाई ने अपना बहुमूल्य समय देकर के बहुत सुंदर सुंदर प्रेरक प्रसंग सुनाए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम सभी बाबा की याद में बैठते हैं।
अभी हम बाबा की याद में बैठेंगे, तो जगदीश भाई जी ने मुझे एक अभ्यास सिखाया था, और वो मैं जब मुझे 2008 में कैंसर हुआ था तो मैंने वो प्रैक्टिस किया था कि बाबा ऊपर है और बाबा से ब्लू वायलेट किरणें मेरे ऊपर आ रही है, तो मैं आपको बताता जाऊंगा आप उस स्थिति में स्थित रहने का। बाबा मेरे ऊपर एकदम पावरफुल रूप में है, निराकार बाबा, बाबा के निराकार बाबा से मेरे ऊपर एक ब्लू वायलेट कलर की रेज आ रही है, एकदम पावरफुल। धीरे धीरे शीर से होते हुए ब्रेन, आंख, कान, मुंह, गला, धीरे धीरे वो रेस आगे बढ़ती जा रही है, छाती में, पेट, दोनों टांगों में, नाखून तक। अब मेरा शरीर धीरे धीरे ब्लू वायलेट हो गया है। मेरा शरीर एकदम ब्लू वायलेट, उसके अंदर जो भी निगेटिव एनर्जी है, जिस भी रोग के जम्स है, वो जल के भस्म हो रहे। मेरे शरीर में कोई भी किसी भी रोग का एक भी जंतु नहीं है। बाबा के रेस से पूरा जल के भस्म हो रहा है। धीरे धीरे मेरी आत्मा पावरफुल होती जा रही है, एकदम गोल्डन, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैला रही है। शरीर भी प्योर और आत्मा भी प्योर, एकदम कंचन काया। शरीर के अंदर एक भी जर्म नहीं, सब कुछ जल के भस्म हो गया है। मैं आत्मा बहुत ही शक्तिशाली बनती जा रही हूं। बाबा के पावरफुल रेस से आप शरीर में कुछ भी नहीं, एकदम प्योर शरीर, कोई भी निगेटिव एनर्जी नहीं। इस प्रकार जब भी आप मेडिटेशन में बैठते हैं, आप इस प्रकार से अभ्यास करते जाइए तो आपका शरीर भी बहुत पावरफुल बनेगा।